अशीति सहस्र योजन, 80,000 योजन चौड़ा है वो। तो उस 80,000 योजन चौड़े अप बहुल भाग में नारक जीव रहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि रत्नप्रभा नाम की जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के तीन भाग हो गए, खर भाग, पंक भाग और अप बहुल भाग। इन तीन भागों में अलग अलग प्रकार के जीव हैं। प्रथम जो खर भाग है उसमें वो उसकी चौड़ाई जो है 16,000 योजन है। उस 16,000 योजन प्रमाण खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी असुर कुमारों को छोड़ देना और 7 प्रकार के व्यंतरों के आवास होते हैं। और उसके आगे चले जाएं तो 84,000 कितना था, 84,000 योजन चौड़ी, उस मतलब उसी पृथ्वी के 84,000 योजन चौड़े पंक भाग में राक्षस और असुर कुमारों के भवन हैं, उनके आवास हैं, क्योंकि भवन तो भवनवासियों के ही रहते हैं, उनके आवास हैं। और फिर आखिरी जो अब्बहुल भाग है 80,000 योजन, कुल कितनी चौड़ाई थी, 180,000। तो फिर जो आखिरी हिस्सा है अब बहुल भाग, वहाँ पर नरक गति के जीव निवास करते हैं, पहली पृथ्वी वाले। फिर इसके आगे एक बात क्या लिखी है, प्रसंग प्राप्त व्याख्यान मिदम, ये प्रसंग को प्राप्त हुआ व्याख्यान है। अपि दुंडम्पि तिरियलोए द्वयानामपि भवनवासी देवानाम वेंतर देवानाम च तिर्यक लोके आवासा संति। और दोनों प्रकार के भवनवासी और वेंतरों के तिर्यक लोक में आवास हैं। दोनों प्रकार के का क्या मतलब हुआ, द्वयानाम पे, ठीक है, दोनों प्रकार के का मतलब हो गया भवनवासियों के और व्यंतरों के, ऐसे दोनों प्रकार के इनके आवास तिर्यक लोक में है। व्यंतरा, व्यंतरा का मतलब क्या है, निरंतरा इति वचनात्, सर्व द्वीप समुद्रेषु तद्वासः, सभी द्वीप समुद्रों में इनके निवास होते हैं व्यंतरों के, इसलिए विगत अंतराह व्यंतराह, वि और अंतर इनकी संधि करोगे तो एको यण ची एक सूत्र लगेगा और वी के ई का य बन जाएगा, व्य हो गया, और फिर अंतरा के अ की संधि हो जाएगी उसमें व्यंतरा, ऐसे रूप बन जाएगा। तो व्यंतरा का अर्थ होता है क्या है कि विगत अंतरा, माने अंतरा नहीं, उनका कोई अंतर नहीं है, अंतराल नहीं है, हर द्वीप में हर समुद्र में मिलेंगे, बीच में कोई हिस्सा खाली नहीं मिलेगा बिना व्यंतरों का, इसलिए व्यंतर शब्द है। सर्वद्वीप समुद्रेषु तद्वासा भवनेषु वसन्ति इति एवं शिविला भवनवासिनः, भवनों में निवास करते हैं इसलिए भवनवासी कहलाते हैं। विविध देशांतरेषु येषां निवासास्ते व्यंतरा, अथवा विविध देशांतरों में जिनका निवास होता है वो भी व्यंतर कहे जा सकते हैं। अथ ज्योतिषाम कल्पसुराणाम नारकाणाम च स्थान नियम माह, अब ज्योतिष के देवों के, कल्पवासी देवों के और नारक जीवों के स्थानों का नियम कहते हैं। जो सियाण विमाना रज्जु मित्ते वितिर्य लोए वि कपसुरा उड्डम्य अहलोए होंदिने रैया। ज्योतिषकों के विमान तिर्यक लोक में रज्जु मात्र स्थान पर पाए जाते हैं, माने एक राजु प्रमाण जो तिर्यक लोक मध्य लोक है उसमें ज्योतिष के देवों के विमान पाए जाते हैं। 790 योजन पृथ्वी से ऊपर चले जाएं और 900 योजन तक आगे ऊपर जाने पर वो पूरी एक पट्टी है ज्योतिष के देवों की, उनके विमानों की, वो सारे विमान पूरे मध्य लोक में विस्तृत हैं। और कपसुरा उद्दम्य और कल्पवासी देव जो होते हैं वो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, और अहलोए हुंती निरैया अधोलोक में नारक होते हैं। इनका विस्तार अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ने वाले हैं, सर्वार्थ सिद्धि की व्याख्या में। अब तेजस कायादि जीवानाम संख्याम गाथा पंचके ना, माने तेजस कायिक अधिक जो जीव होते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है उसको पांच गाथाओं के द्वारा बताएंगे। 147वीं गाथा है, बादर पज्जत तिजुदा घण आवलिया असंख भागादु किंचून लोय मित्ता तेउ वाउ जहा कमसो। बादर और पर्याप्तियों से युक्त तेउ वाउ, तेउ वाउ यानी तेजस कायिक अग्निकायिक और वायु कायिक, ये घन आवलिया असंख भागादु जहा कमसो, माने तेजस कायिक जो होते हैं वो घन आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं। घन आवली का मतलब एक आवली में असंख्यात समय है, उसको आवली को आवली से और फिर उसको एक आवली से गुणित कर दो तो असंख्याता संख्यात संख्यात, वो जितने समय होंगे तो उसके असंख्यात भाग कर दो, तब जो असंख्यात वह भाग आएगा उसमें जितने समय होंगे उस गिनती के बराबर है असंख्यात, तो उतने असंख्यात तेजस कायिक जीव होते हैं। और किंचून लोय मित्ता, लोकाकाश के जितने प्रदेश होते हैं उससे किंचून माने कुछ कम वायु कायिक संख्या की अपेक्षा, अवगाहना की अपेक्षा नहीं, अवगाहना हर जीव की असंख्यात प्रदेश ही होती है, किसी भी जीव के असंख्यात प्रदेश से कम अवगाहना नहीं होती। प्रदेश यानी एक परमाणु जितना स्थान घेरता है आकाश का वो, और परमाणु सांख्य दर्शन अथवा वैशेषिक दर्शन वाला परमाणु नहीं और न ही वर्तमान विज्ञान वाला परमाणु। परमाणु जो जैन दर्शन में बतलाया गया कि पुद्गल का वो अंतिम खंड जो एक है यूनिट, उसके आगे पुद्गल का विभाजन संभव नहीं है, वो अपने आप में एक पुद्गल द्रव्य है जो सबसे सूक्ष्म है, उसका नाम परमाणु है, अविभागी है। तो परमाणु आकाश के जिस हिस्से को घेरता है उतने छोटे स्थान को क्षेत्र कहते हैं, पर प्रदेश कहते हैं, उतने छोटे क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। और एक जीव कम से कम आकाश के असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, उससे कम स्थान पर नहीं रहता, और जीव अनंत है, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात प्रदेशों में अनंत जीव रहते हैं। कैसे रहते होंगे? उसका सरल सा जवाब यह है कि जीवों में, अनंत जीवों में अधिकांश जीव सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से युक्त है, स्थावर है, ज्यादा स्थावर है, त्रस कम है, त्रस केवल त्रस नाड़ी में है, बाकी स्थावर जो है वो तो सारे लोक में है, त्रस नाड़ी में भी है और त्रस नाड़ी के बाहर निष्कुट क्षेत्रों में भी है। त्रस नाड़ी के बाहर वाले भाग को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। लोक में जैसे आकाश के दो हिस्से कर दिए, लोक और अलोक, फिर लोक में ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक तो एक है ही है, विभाग है, तीन लोक बोलते हैं उसको, लेकिन जो त्रस नाड़ी है जहाँ त्रस जीव है दो इंद्रियों को आदि लेकर पंचेंद्रिय तक, वो वाला हिस्सा त्रस नाड़ी कहलाता है। और उसके अतिरिक्त जो भाग होता है बाहर का जहाँ केवल स्थावर है वो हिस्सा निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। पुढ़वी तो ये शरीरा जवाब मिला कि नहीं आपको उस प्रश्न का? अनंत जीव असंख्यात प्रदेश में कैसे रहते हैं? हमने हिंट तो दिया था सूक्ष्म और बादर नाम कर्म का। बादर शरीर वाले जीव असंख्यात है और सूक्ष्म शरीर वाले अनंत हैं। असंख्यात तो त्रस नाड़ी में असंख्यात प्रदेश हैं और असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, तो असंख्यात जीव तो वहाँ रह जाते हैं, लेकिन बाकी जो सूक्ष्म हैं वो अनंत है। और अनंत का मतलब असंख्यात प्रदेश में असंख्यात प्रदेश घेर करके एक एक जीव निवास कर रहा है। और अनंत जीव कैसे निवास कर रहे हैं? क्योंकि सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जो शरीर प्राप्त होता है वो एक दूसरे को रोकता नहीं है और किसी से रुकता भी नहीं है। तो एक सूक्ष्म नाम कर्म के उदय वाला जीव जहां पर है वहां पर ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत जीव एक साथ उतने ही स्थान में रह सकते हैं बिना टकराए। सूक्ष्म नाम कर्म की ये विशेषता बताया था हमने, दीवारों को पार करके निकल जाए वो, डायमंड की अंगूठी से भी अंदर से निकल जाए वो निगोदिया, सूक्ष्म निगोद वाले जो शरीर के धारी जीव हैं ऐसे आर पार हो जाए। तो वो कहीं रुकते नहीं हैं और किसी को रोकते नहीं, किसी से टकराते नहीं, इसलिए अनंत जीव इस असंख्यात प्रदेशी लोक में रह पाते हैं। वरना अगर अपन जैसे जीव हों, बादर जीव, तो बादर जीव तो एक हॉल में भी एक निश्चित संख्या से ज़्यादा नहीं रह पाएंगे। और वो तो कुछ मुनिराजों को रिद्धियाँ होती है, अक्षीण महालय नाम की जो रिद्धि होती है, तो उन रिद्धिधारी मुनियों के प्रभाव से वो जहाँ उपदेश करते हैं उस आलय में चक्रवर्ती की सेना भी विराजित हो सकती है, किसी को स्थान की कमी नहीं पड़ेगी, भले वो छोटी सी गुफा हो, वो रिद्धि का प्रभाव है। पुडवी तो ये शरीरा पत्ते पैठिया इयरा, होंति असंखा सेढ़ी पुन्ना पुन्ना यतह यतसा। ये संख्याएं बतलाई जा रही है जीवों की। तो पिछली गाथा में क्या कहा था, 147वीं गाथा में ये बतलाया था, बादर पर्याप्तक अग्नि का एक जीव घन आवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। माने घन आवली ये काल को मापने का परिमाण है। और यहां पर क्या निकालना चाह रहे हैं, जीवों की गिनती। तो कितने हैं वो, असंख्यात है। असंख्यात कौन सा वाला असंख्यात, तो बोले घन आवली ले लो और घन आवली के असंख्यात भाग कर दो तो उसमें भी असंख्यात समय होंगे। और असंख्यात समय, वो जितने असंख्यात समय होंगे उतने बादर अग्नि का एक जीव होते हैं पर्याप्तक। अब फिर बादर वायु का एक जीव कितने होते हैं, तो किंचूण लोयमित्ता लोक, यानी ये जो 343 राजू प्रमाण लोक है इसमें जितने प्रदेश हैं उससे कुछ कम बादर वायु कायिक जीवों की संख्या है। आ गया ना समझ में? अब लोक में जो प्रदेश हैं वो कितने हैं, असंख्यात कोई मामूली असंख्यात नहीं है वो। इसके बारे में अपन ने सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा था कि एक अंगुल के घनांगुल के, घनांगुल का मतलब उंगली है, और उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक बराबर ले लो और उसके असंख्यात भाग कर दो तो उसके असंख्यात वे भाग में आकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। उस उन असंख्यात प्रदेशों को अगर टाइम में कन्वर्ट कर दो, समय में परिवर्तित कर दो, तो उतने असंख्यात समय कितने काल में होते हैं मालूम है? अथवा उतने असंख्यात समयों को अगर काल में परिवर्तित अपन वो कर लें, उतने असंख्यात प्रदेशों को काल में कन्वर्ट कर लें, तो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल निकल जाएंगे। बहुत विचित्र जानकारी है कि एक घनांगुल के असंख्यातवे भाग में आकाश के जितने प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों को अगर समय में परिवर्तित किया जाए तो वो समय कितना विशाल हो जाता है। तो असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में जितने समय होते हैं उतने समयों के बराबर घनांगुल के असंख्यात वे भाग में आकाश के प्रदेश होते हैं। फिर पूरे लोक में कितने असंख्यात प्रदेश होंगे उसका हिसाब लगा लो। जब इसके अंगुल के असंख्यात वे भाग में इतने समय हैं, इतने प्रदेश हैं कि समयों में कन्वर्ट करने पर असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी निकल जाए, सीधे सीधे ये कह लो कि असंख्यात बार 24 तीर्थंकर हो जाए, संख्यात नहीं 10 बार हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। अरे एक 24 में तो एक जीव अनंत भाव असंख्यात भाव धारण कर लेता है एक 24 में, फिर इतने लंबे समय में कितने भाव होते होंगे। और काल की कोई सीमा नहीं, न पीछे सीमा है ना आगे सीमा है, और जीव का अस्तित्व भी अनादि निधन है, कहीं से शुरुआत नहीं हुई, किसी ने बनाया नहीं जीव को, अनिर्मित है, अकृत्रिम है अनादि से। जैसे आकाश है, अब आकाश कब से है, काल है, काल कब से है, आप कहोगे कि यहां से है काल इतने करोड़ साल पहले से, तो फिर उसके एक सेकंड पहले क्या था। अब ये चर्चा आपने एक सेकंड की उठाई तो वो एक सेकंड ही तो काल हो गया। तो काल की कहीं शुरुआत नहीं है, आकाश की कहीं शुरुआत नहीं है, कहीं अंत भी नहीं है। उसी प्रकार ये जीव भी संख्या की अपेक्षा अनंत है और अस्तित्व की काल की अपेक्षा भी अनादि निधन। अनादि निधन का मतलब अनादि यानी आदि से रहित, किसी बिंदु से जीव के अस्तित्व की शुरुआत नहीं हुई, और निधन, निधन के साथ भी वो अ जुड़ेगा अनिधन, लेकिन वो समास प्रक्रिया में अनादि निधन शब्द बनता है, दो बार अ शब्द नहीं देते, अनादि और अनिधन ऐसा विग्रह निकलता है। अनिधन का मतलब उसका अंत भी नहीं है, यानी पीछे भी कोई छोर नहीं है अतीत में और आगे भविष्य में भी कोई छोर नहीं है। जब अपने जीव द्रव्य की अपन पहचान करते हैं तो फिर वो त्रिकाली सत्ता अपने परिचय में आती है। यद्यपि अपना ज्ञान उतना विस्तृत नहीं है लेकिन अनुमान ज्ञान में वो बात प्रवेश करती है, वो बात ऐसे अनुमान में समझ में आती है कि नहीं उसके पहले उसके पहले उसके पहले उसके पहले। आप विचार करके देखो, थोड़ा विचार करने से समझ में आएगा कि इस शरीर के पहले किसी और शरीर में, उसके पहले क्या ऐसा कोई भी समय था जब मैं शरीर रहित रहा हूं। उसके पहले किसी न किसी और शरीर में, उसके पहले और किसी शरीर में, कहां तक चले जाओगे। कहीं शुरुआत है। अगर अपन सपोज भी करें, एज्यूम भी करें, कल्पना भी करें कि हाँ कहीं से शुरुआत है, तो फिर कई शंकाएं खड़ी हो जाएंगी कि यदि वहां से शुरुआत मानते हैं तो कितनी दिक्कतें आ जाएंगी, कैसे हुई शुरुआत, ये प्रश्न आएगा सबसे प्रथम प्रश्न। एक दिन हमने कहा था कि कुछ प्रश्नों में तो सब कुछ समा जाता है, क्या, कौन, कब, कहां, क्यों, कैसे, लिख लो, क्या, कौन, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं है दुनिया में। क्या, कौन, कब, कहां, क्यों और कैसे, छह शब्द हो गए। अब इसमें हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ इसमें आ जाता है, कुछ भी इससे परे नहीं है। कब कहोगे तो हिस्ट्री आ गया, क्यों और कैसे कहोगे तो साइंस, कहां कहोगे तो ज्योग्राफी, और क्या कहोगे तो फिर सब डेफिनेशंस आ जाएंगे, सबके स्वरूप आ जाएंगे। कौन तो उसमें भी बाकी बचे हुए सब कुछ आ जाएंगे। तो इन सवालों में सब कुछ भरा हुआ है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या और कौन, दोनों प्रकार से अपने बारे में प्रश्न किया जा सकता है। कब से हूँ, कब तक हूँ, कहाँ से आया, यहाँ क्यों आया, कैसे छुटकारा मिले इस जंजाल से, इन्हीं सवालों में सब कुछ भरा हुआ है। तो काल को अतीत में जाकर देखो तो कहीं कोई उसका छोर नहीं मिलने वाला, और अनागत में जाकर देखो तो, अनागत यानी भविष्यत, भविष्यत में काल का कहाँ पर समापन है। कोई कहे कि प्रलय के बाद सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट केवल अवस्था होती है, पदार्थ नष्ट नहीं होता, वस्तु का अंत नहीं होता, वस्तु की एक अवस्था समाप्त हो सकती है। जैसे मनुष्य जीवन समाप्त हो सकता है, लेकिन मनुष्य जीवन जीने वाला जो जीव था, वो जीव शब्द ही कह रहा है, जो जीवति इति जीव है, जीवित रहने वाला जो द्रव्य है उसका नाम जीव है, मरता है, मनुष्य की अपेक्षा मरता है, सत्ता से नहीं मरता। सत्ता यानी यहां पर वो शासन वाली सत्ता का प्रकरण नहीं है, सत्ता यानी अपनी मौजूदगी, अस्तित्व, अस्तित्व से कभी नष्ट नहीं होता। अवस्था बदल जाती है, अवस्था नष्ट होती है, नई उत्पन्न भी होती है, और उसी से तो अनित्यानुप्रेक्षा की चर्चा चलती है। जो भी उत्पन्न हुआ है नष्ट अवश्य होगा, पर्याय रूप से कुछ भी स्थिर नहीं है, ये चर्चा आती है। आयु का क्षय होने से मृत्यु होती है, और आयु इंद्र भी नहीं दे सकता, यदि इंद्र किसी को जिला सकता तो वो खुद क्यों मरता, आई थी गाथा। फिर संसार अनुप्रेक्षा में भी बहुत सारी बातें आई थी कि बोले कि संसार को धिक्कार हो, और मोह की महिमा देखो कितनी विचित्र है, कि दुखीय कम्म वसादो राया भी असुई कीड़ो होती, पाप कर्म के कारण राजा गंदगी का कीड़ा बन जाता है, और तथ्य वे कुणई रईम पेख मोहस महाप, बोले उसी स्थान पर उसको प्रेम हो जाता है। देखो मोह की महिमा कैसी विचित्र है। फिर एकत्वानुप्रेक्षा में कहा था कि अकेला है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरण को प्राप्त होता है, अकेला सुख दुख भोगता है, अकेला पुण्य बंद करता है, पाप बंद करता है, अकेला ही संसार शरीर भोगों से उदासीन होता है, विरक्त होता है, तपस्या करता है, और पुरुषार्थ के द्वारा संसार से पार भी अकेला ही होता है। यानी परमार्थ से देखा जाए तो जीव एकाकी है इस विशाल संसार सागर में, न दो है, न तीन, न पांच, न दस, कोई किसी का नहीं है, सब अकेले हैं। मोहवश, स्नेहवश जुड़न हो जाता है, लगाव हो जाता है, और फिर एक ग्रुप जैसा बना लेते हैं, लेकिन जब तक कर्मों का साथ है तब तक वो रहेगा, उसके बाद जैसे पक्षी सवेरे रात भर पेड़ में विश्राम करने के बाद कोई पूर्व दिशा में चला जाता है, कोई दूसरी जगह चला जाता है, कोई वहीं पास में गांव में चला जाता है कुछ दाना चुगने के लिए, रुके थे साथ में लेकिन गए अलग अलग, उसी प्रकार सब कुटुंब में एक साथ आते हैं, रह लेते हैं आयु पूर्ण करके, फिर अपने अपने कर्मानुसार अपनी अपनी गतियों में चले जाते हैं, अकेले ही हैं जीव। ये भ्रम है कि ये साथी है और वो साथी है, जब साथ रहने वाला, जीवन भर गर्भ से साथ रहने वाला शरीर भी छूट जाता है, तो फिर अन्य साथी की तो कल्पना ही कल्पना है, उसके सिवा कुछ नहीं है। फिर धन दौलत आदि जो कुछ भी है पुण्य के योग से अपने साथ है, लक्ष्मी किसी को नहीं चाहती। जिसके पास पुण्य है उसके पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी को उसका साथ देना पड़ता है पुण्य का, व्यक्ति का नहीं देती साथ। और जैसे ही उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, व्यक्ति को भ्रम होता है कि लक्ष्मी मेरे साथ है, लक्ष्मी उसके साथ नहीं पुण्य के साथ है। और जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ लक्ष्मी छोड़ जाती है, तो फिर वो डिप्रेस हो जाता है, टूट जाता है, उसका जीवन बिखर सा जाता है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसने भ्रांति वश लक्ष्मी को अपना माना था, और जब उसने छोड़ दिया तो लगा कि अपनों ने भी हमें छोड़ दिया, तो तकलीफ तो होगी। पहली गलती तो ये थी कि जो अपना नहीं है उसको अपना माना क्यों, जो अपना नहीं उसको अपना मानते नहीं तो तकलीफ नहीं होती। पराये को अपना मानने के कारण जीव ने अनंतों बार संसार में सदमे झेले हैं, ठेस खाई है, और न जाने कितने कष्ट भोगे हैं। कुछ भी अपना नहीं, सब अन्य है, अन्यत्व अनुप्रेक्षा। फिर अश्रित्व अनुप्रेक्षा, सबसे ज्यादा लगाव जो होता है जीव का अपने देह के प्रति, शरीर के प्रति, वो तो कहने भर की बातें हैं, बस साहित्यिक भाषा है कह लो, कि किसी से कह दिया कि तू मेरे से, मेरे लिए जान से प्यारा है, साहित्यिक भाषा, अलंकारिक शब्द है। वास्तव में जान से प्यारा कुछ नहीं होता, अपनी जान ही सबको सबसे ज्यादा प्यारी होती है। और ये दास का दास हो जाता है, और इसीलिए उदास रहता है। दास का दास यानी मकान में रहने वाला व्यक्ति, जिसने मकान बनवाया है वो मालिक है या नौकर है? मालिक है। और अगर वो नौकर जैसा बिहेव करे, बर्ताव करे, तो मालिक होते हुए भी नौकर की श्रेणी में गिना जाएगा। लेकिन यहाँ मनुष्य जीवन में तो इससे भी बड़ी विडंबना ऐसी है कि नौकर का नौकर बन गया। अपन प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय लेकर के यहाँ पर जन्मे हैं, यानी अपना जो शरीर ये बना है माँ के गर्भ में, और फिर उसके बाद आहार पानी आदि के द्वारा विकास को प्राप्त होकर आज वर्तमान इस अवस्था में है। इस शरीर में रहने वाला जो जीव है वो जीव व्यवहार ने से इस शरीर का स्वामी है, और शरीर का स्वामी होते हुए यदि वास्तव में उसको स्वामी माना जाए, तो जो जिसका स्वामी होता है वो उसका क्या होता है? यदि जीव शरीर का स्वामी है तो शरीर जीव का क्या है? सेवक? शरीर जीव का सेवक है। अगर जीव शरीर से सेवा ले तो, और जीव अगर शरीर की सेवा करे तो सेवक का सेवक हो जाए। बस इसी को कहते हैं दास का दास उदास। दास का दास हो गया। जिस शरीर से अपन मनुष्य पर्याय में वो काम कर सकते हैं जो देवों के लिए दुर्लभ है, उस शरीर की सेवा में अपन खुद लग जाएं। रात को 2 बजे पान मसाला चाहिए, जी सरकार, चाय पीनी है, पत्नी को जगाया, चाय बनाओ, पत्नी पूछती है कि अभी कितने बजे, बोले अभी 1:15 बजे। रात के 1:15 बजे पत्नी से चाय बनवाई और चाय पी। क्यों? दास का दास बनने पर यही सब समस्याएं खड़ी हो जाती है। वास्तव में ये मनुष्य पर्याय में जो शरीर मिला था, औदारिक शरीर, इस औदारिक शरीर से अपने को कोई दूसरा काम करना चाहिए था, पर चूंकि या तो अपने को पता नहीं था कि वो काम हमें करना चाहिए कि नहीं, या फिर अपन ने निर्णय नहीं किया कि करूं या ना करूं, ये तय नहीं कर पाए जीवन भर कि वो काम मैं करूं अथवा नहीं, इसलिए भलताज काम करने लग गए, कोई दूसरी गतिविधि में लग गए। देखो सुनते समय कैसा लगता है आपको और बाहर जाने के बाद कैसा लगता है? कई बार ऐसा हुआ,